हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। उधर दादी के पास जाकर सिद्धार्थ बोला, दादी मैं जा रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूँगा। दादी उससे पूछना चाहती थीं कि झलक कहाँ है, लेकिन सिद्धार्थ बिना कुछ बोले तेज कदमों से वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर झलक का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने अपने अपार्टमेंट में खुद को लॉक कर लिया था। उसने सोच लिया था कि ना तो वो पार्टी में जाएगी, और अगर पार्टी में नहीं जाएगी तो कोई उसे खुराना परिवार का हिस्सा नहीं मान पाएगा। वैसे भी वो दुनिया से खुद को बचाना चाहती थी, किसी भी तरह के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने जानबूझकर सबको दूर कर दिया था, लेकिन वो जानती थी कि सिद्धार्थ खुराना जरूर आएगा, इसलिए उसने तुरंत अपने दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह लॉक कर लिया ताकि सिद्धार्थ जबरदस्ती उसे वहां से ना ले जाए। इस वक्त सिद्धार्थ गुस्से से तेजी में आगे बढ़ रहा था, और कुछ ही देर में वो झलक के अपार्टमेंट जा पहुंचा। सिद्धार्थ के हाथ में अब भी वही लिमिटेड एडिशन की ड्रेस और कपड़े थे, साथ में डायमंड स्टड ज्वेलरी थी जिनकी कीमत लाखों नहीं करोड़ों में थी। लेकिन झलक को अब इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। भले ही करोड़ों का सामान क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए मायने सिर्फ वो अंगूठी रखती थी जो उसने आर्यन से खरीदी थी। उसने उसकी किश्त के रूप में 20,000 रुपये दे दिए थे और धीरे धीरे 1,00,000 रुपये देने वाली थी। वो 20,00,000 नहीं, सिर्फ 1,00,000 रुपये देने की सोच रही थी। लेकिन अब जब उसे लगा कि सिद्धार्थ ने उसके पैसे चुरा लिए हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि वो पैसे सिद्धार्थ ने नहीं लिए थे। फिलहाल गुस्से में सिद्धार्थ ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन झलक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी, मगर सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसे सिद्धार्थ का सामना करने का मन नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ भला इस तरह कैसे मान सकता था। उसने गुस्से में जोर जोर से दरवाजे पर थपेड़े मारने शुरू कर दिए, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार धीरज रायचंद की बातें ही घूम रही थी कि झलक और आर्यन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये बात उसे गुस्से से पूरी तरह भर रही थी, और उसका सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा अब उसके अंदर उबल रहा था। वो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के पास खड़ा था, गुस्से में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। वहीं झलक इस तरह लगातार दरवाजे के पास हो रहे शोर शराबे को देखकर थोड़ी डरी हुई थी और सोचने लगी, लगता है तो राक्षस कुमार अब ज्यादा ही गुस्से में है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दरवाजे को मार पीट कर मेरे पास आ जाए और मुझे भी नुकसान पहुंचा दे। वैसे भी वो काफी ताकतवर है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे खुद को सुरक्षित करना चाहिए। यही सोचते हुए उसने तुरंत खुद को अंदर बाथरूम में बंद कर लिया। लेकिन तब तक सिद्धार्थ खुराना अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था, और उसने अपनी नज़रों से पूरे अपार्टमेंट को स्कैन करना शुरू कर दिया था। पूरे अपार्टमेंट में झलक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर झलक ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था और सोच रही थी कि उसके साथ अब सिद्धार्थ कैसे बर्ताव करेगा, और वो अंदर से ही बोली, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश की और जबरदस्ती मुझे पार्टी में लेकर गए, ब्लैकमेल किया, तो मैं पूरी दुनिया को सच बता दूंगी। मैं पूरी पार्टी में सबको ये बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ कितनी बार जबरदस्ती की है। इतना ही नहीं, आज मैं पूरे समाज के सामने ये भी बता दूंगी तुमने कितनी बार मेरे साथ जबरदस्ती की। और जिसको आज दादी पूरे समाज के सामने अपनी धम पोती बनाना चाहती है, असल में मैं उसी के पोते के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब जैसे गुस्से में झलक ने ये सारी बातें बोली, सिद्धार्थ ठंडा सा रह गया। गुस्से में उसने झटके से बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया और झलक को बालों से पकड़कर बाहर ले आया। वो उसे गुस्से से घूरने लगा, लेकिन झलक भी कुछ कम नहीं थी और उसे घूर रही थी। तब सिद्धार्थ ने अपने हाथ से बंदूक निकालकर झलक के माथे के पास लगा दी और धमकाते हुए बोला, अपनी हद में रहो, एक मामूली सी केयर टेकर हो और खुद को इतना इम्पोर्टेंट कब से समझने लगी हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसी लड़की में कभी इंटरेस्टेड रहूंगा? हाँ, ये बात अलग है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। अब मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, चाहे तुम इसका कोई भी मतलब निकालो। झलक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर देकर कहा, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सिद्धार्थ ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्लान अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू करने का है। इनडायरेक्टली यहाँ सिद्धार्थ का सीधा मतलब आर्यन से था, लेकिन मेरे जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समझ गई, आज तुम दादी की बर्थडे पार्टी में जाओगी और दादी तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस करेगी। उसके बाद तुम ऑफिशियली खुराना परिवार का हिस्सा बन जाओगी। तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका सारा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा। अपने छोटे दिमाग को ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। झलक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो क्या कर लोगे? सिद्धार्थ पागलों की तरह हंसते हुए बोला, जानती हो उसके बाद क्या होगा? अगर तुम पार्टी में नहीं गई तो शायद दादी को बुरा लगेगा और हो सकता है कि उसके बाद में तुम्हारे पूरे परिवार को मुश्किल में डाल दूंगा। तुम्हारे परिवार की जान लेने की कोशिश हो या ना हो, लेकिन मेरे वार से कोई नहीं बच पाएगा। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने खुले तौर पर झलक को धमकी दी, झलक का गुस्सा और बढ़ गया। वो उसे और खरी खोटी सुनाना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में अभी भी कमजोरी थी। वो एक बड़े एक्सीडेंट से बचकर आई थी और अब उसकी आंखें बंद हो गईं। सिद्धार्थ ने झलक को अपनी शक्ति का एहसास कराया। अगले ही पल उसके इमोशंस और चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में झलक के लिए प्यार झलक की आंखें बंद होने के बाद भी साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से झलक को गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। कुछ देर वो उसे देखते रहा। फिलहाल उसने देखा कि उसका फोन लगातार बज रहा था। फोन किसी और नहीं बल्कि रौनित का था, क्योंकि रौनित को यहाँ का काम निपटाने के बाद सीधा मेंशन के ग्रैंड होटल में जाना था, ताकि वहाँ जाकर दादी के बर्थडे की सारी तैयारी कर सके। अगर वो समय पर नहीं गया तो पार्टी के शुरू होने तक सब कुछ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अब पूरा दिन बीत चुका था और पार्टी शुरू होने में केवल एक दो घंटे बाकी थे। वेल, पार्टी शुरू होने वाली थी। अब सिद्धार्थ रौनित के पास बाहर गया। उसने उसके हाथ से कपड़े और ज्वेलरी ले ली और रौनित को जाकर पार्टी की तैयारी करने के लिए कहा। साथ ही उसने कहा कि वो दादी को बता दे कि झलक समय पर वहाँ पहुँच जाएगी। ये कहकर उसने तुरंत अपार्टमेंट का दरवाज़ा पटक दिया और अंदर आ गया। बेहोश पड़ी झलक को देखकर वो बोलने लगा, क्यों इतना आर्ग्यूमेंट करती हो मुझसे? क्या तुम्हें बिल्कुल भी मुझसे डर नहीं लगता? हाँ, तुम जानती हो अच्छे अच्छे लोग मेरे सामने आने से डरते हैं। अपनी जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन तुम दिल में जो है वो बोल देती हो और जो चाहे करती हो। शायद यही बात तुम्हारी मुझे पसंद है। तुम्हारा ये बिंदास तरीका ही मुझे रोकता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त ना दूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स कभी तुमसे शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे तुमसे मोहब्बत करना मेरी कमजोरी बनती जा रही है। बहुत बड़ा कमजोर हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हारी मर्जी शामिल हो या ना हो, तुम्हें जन्मदिन की पार्टी में आना ही होगा और इसके लिए मुझे ही तुम्हें तैयार करवाना होगा। कुछ सोचते हुए वो आगे बढ़ा, फटाफट से लाइट क्लोज कर दी और झलक के कपड़े उतारना शुरू कर दिया, ताकि वो उसे दूसरे कपड़े पहना सके। इसी बीच रणवीर बेचैनी से देख रहा था। उसके सामने दो लोग घायल अवस्था में पड़े हुए थे। उनके चेहरे से खून बह रहा था, नाक और कान से भी खून निकल रहा था। दोनों गंभीर हालत में केवल यही कह रहे थे,
बॉस माफ कर दीजिए, आर्यन के बारे में हमें ज्यादा खबर नहीं मिल पाई है और आर्यन नाइट क्लब से ही झलक के साथ है, वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी है।